देखते हैं तफसीर। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि ये सूरत जो है ये तमाम की तमाम तौहीद के गिर्द घूमती है। शिर्क का रद्द है इस सूरत के अंदर। और आप देखेंगे कि उस वक्त से हम जितना पढ़ चुके हैं इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी अपनी निशानियों की तरफ तवज्जो दिला के इंसान को तौहीद का सबक दिया। और शिर्क की बताया कि शिर्क की कोई दलील नहीं है। और शिर्क के ऊपर मुख्तलिफ बातें करके उसको रद्द किया गया। आज भी हम सबक में यही देखेंगे और मुशरिकीन के अकायद का रद्द देखेंगे, जो अकीदे वो रखते थे, जो या वो जो एतराजात करते थे उनके जवाबात हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات نمبر 41 سے والذين اور وہ لوگ هاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے راستے میں من بعدی اس کے بعد کے ما ظلموا وہ ظلم کیے گئے وہ لوگ جن کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اب ہجرتیں تو آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہجرت کرتے ہیں ایون پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں جانور ہجرت کرتے ہیں इंसान एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके जाता है, कभी रिस्क के लिए, कभी इल्म के लिए, कोई और अपने कोई फायदे होते हैं। बाज दफा शादियों के लिए लोगों को हिजरत करनी पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है, मूव हो जाना परमानेंटली, वो हिजरत है। अच्छा, अब अपने इलाके को छोड़ के दूसरी जगह चलेगा, लेकिन इन हिजरतों का कोई यानी ऐसा सवाब नहीं है, जबकि अल्लाह ताला के रास्ते में जो हिजरत की जाती है वो ऐसी हिजरत है जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि लनुबवी अन्नहुम फिद दुनिया हसना वला अजरुल आखिरती अकबर। ऐसे लोग जो अल्लाह की खातिर हिजरत करते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी रिवॉर्ड करता है कि उनकी दुनिया को अच्छा कर देता है, उनको दुनिया में ठिकाना देता है अच्छा, और आखिरत में भी उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अब अगर आप वहां के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब लोग इस्लाम कबूल कर चुके तो उनके अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, अपने करीबी, अपने दोस्त अहबाब बेगाने हो गए, मोहब्बतें दुश्मनियों में बदल गई। वही लोग जो जान से प्यारे समझते थे वही अब मुखालफत करने लगे, जमीन तंग हो गई थी उनके लिए। और वो किस लिए ऐसा कर रहे थे? सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के लिए कि इस रास्ते पे नहीं चलना, इसकी वजह से जुल्म करने लगे थे। अब ये जुल्म चाहे कोई मुसलमान कर रहा हो, चाहे कोई काफिर कर रहा हो, मगर जुल्म करना इस वजह से कि कोई अल्लाह के दीन पर ना चले, कि अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़ दे, इसके ऊपर फिर उनके ऊपर जमीन तंग हो गई तो उन्होंने जमीन छोड़ दी, दीन नहीं छोड़ा। और यही चीज हमें हमेशा याद रखनी है। आज तो हिजरतें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि किसी को दीन की वजह से इस तरह से किया जाए। हाँ, बास मुल्क ऐसा है जहां पे जैसे चाइना में लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में क्यों बंद किया, कोई और वजह नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान और वो अपना दीन छोड़ दें, इसके लिए उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही, उनको इस दीन से हटाने के लिए। और उनको क्या क्या सिखाया जा रहा है, कौन सी एजुकेशन दी जा रही है, और उनकी अपनी तरफ से वो क्लींसिंग कर रहे हैं। क्या क्लींस कर रहे हैं? दीन। ऐसे वक्त में फिर ऐसे लोगों के लिए हिजरत करना जरूरी हो जाता है। तो मुशरिकी ने मक्का ने मुसलमानों का भी यही हाल कर दिया था। इसकी वजह से पहले दो हिजरतें की मुसलमानों ने हबशा की तरफ, और अभी हिजरत नहीं हुई लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पे एक मदीना की तरफ हिजरत करने की तरफ भी इशारा मिल जाता है कि हिजरत मुसलमानों को करनी पड़ेगी। जब उनके ऊपर जुल्म इतना हो जाए तो ऐसा नहीं कि दीन छोड़ दो। अगर आप किसी जगह ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आपके लिए दीन पे चलना मुश्किल हो जाए। ऐसी प्रोसिक्यूशन तो आज नहीं है, लेकिन फिर भी बास जगह ऐसी होती हैं जहां पे इंसान समझता है कि यहाँ पे मेरा दीन महफूज नहीं है, तो उसको चाहिए कि वहां से हिजरत कर ले, फिर वहां ना रहे। और इंसान को सबसे ज्यादा पहला डर क्या होता है, क्या करेंगे, फिर खाएंगे कहाँ से, फिर पिएंगे कहाँ से, जॉब का क्या बनेगा, मेरे तिजारत का क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देगा, और आखरत का तो अगर अजर पता चल जाए ना, तो इंसान खुश हो जाए। इतना बड़ा अजर है। क्यों? इसलिए कि ये आसान नहीं है। घर बार छोड़ना, अपने रिश्तेदार छोड़ना, अपने दोस्त अहबाब छोड़ना, अपना वतन छोड़ना, सबसे बड़ी बात है अपनी प्लेस ऑफ कंफर्ट को छोड़ देना, अपनी जॉब्स, अपने माल, अपनी बिजनेस सब छोड़ छाड़ के एक इंसान कहे कि मैं अल्लाह की खातिर दूसरी जगह मूव हो जाता हूँ, बहुत बड़ी बात है। कहना आसान है, ये करना आसान नहीं था। आप सोचें कि उस वक्त मुसलमानों को, यानी अच्छे भले रह रहे हैं एक जगह पे, उस वक्त तो या आज तो दूसरे लोगों में, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं लोग बहुत तरक्कियों के लिए और अपने करियर बनाने के लिए और वजूहत की बिना पे, लेकिन उस वक्त लोग इस तरह छोड़ के नहीं जाया करते थे। जहां पे पैदा होते थे वहीं पे मरते थे, हिजरतें नहीं होती थी ऐसी, और लोग अपने कबीले के अंदर रहने में सेफ्टी महसूस करते थे, उनका ट्राइबल सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। तो ऐसे हालात के अंदर एक अल्लाह की खातिर चले जाना कहीं आसान है? कोई माली कुर्बानी तो देना, जज्बात की कुर्बानी कितनी बड़ी। इमोशंस इंसान के अटैच्ड होते हैं किसी जगह से, आसान नहीं होता। तो आज अगर ऐसे हालात हो, मिसाल के तौर पे फितना दिज्जाल में इंसान को निकलना पड़ेगा और कहीं जाके गारों में पनाह लेनी पड़ेगी, कहीं दूर दराज इलाकों में जाना पड़ेगा अपने दीन को बचाने के लिए, खुद सोचिए क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम उठ के और अपना सारा घर बार छोड़ के और चल पड़े। इंसान को कितने खौफ, कितने खदशात आते हैं, तो उनका भी सोचे। जब मुसलमानों ने उस वक्त हिजरत की थी तो वो आसान नहीं था। ये आयतें पढ़ लेनी आसान होती है, जो यकीन है ना वो कर लेना कि अल्लाह देगा हसना, अल्लाह का वादा है, अल्लाह बेहतरी देगा, और अल्लाह ने दी। आप देखिए वो ही मुसलमान जो खाली हाथ पहुंचे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, यानी हजरत सुहेब जो थे वो जिस वक्त हिजरत करने लगे तो काफरों ने रोक लिया, उन्होंने कहा तुमने जो कुछ कमाया है यहाँ पे मक्का में कमाया है, लिहाजा तुम अपना सारा माल यहाँ छोड़ के जाओगे, ऐसे नहीं तुम जा सकते। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने अपने सारे माल का पता बता दिया, फलां फलां जगह पे मेरा ये माल पड़ा। तो खाली हाथ वहां से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। क्या थी उनको लालच के नबी अलैहि सल्लतु वसल्लम के पास जाना, वरना मक्का के अंदर अगर मुसलमान ना होते तो उनको कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ही ये था कि ये कलमा छोड़ दो। तो आप देख लें बहुत सारी मिसालें हैं गुलामों की, खास तौर पे कि उनके ऊपर तो कितना ज्यादा जुल्म हो रहा था कि ये दीन छोड़ दें, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो ठीक है, दीन नहीं छोड़ना, जमीन छोड़ दें। तो अल्लाह ताला ने उनको बरकतें दी, फिर जो खाली हाथ आए थे वही हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ को देख लें, फरमाते हैं मट्टी को हाथ लगाता था सोना बन जाती थी, इतना अल्लाह ने दिया उनको कि आप सरसरम ने फरमाया अब्दुलरहमान तुम मुझे जन्नत में, मैंने तुम्हें देखा है, तुम रींगते हुए पहुंचे हो। तो परेशान हो गए कि या रसूलल्लाह क्या वजह है, फरमाया तुम्हारा माल, तुम्हारे माल का हिसाब, अभी उनका माल हलाल का था। तो इतने फयाज थे, पूरा काफला एक दफा आया उनका जिसमें कई सौ ऊंट थे और सामान से भरे हुए थे, सारा का सारा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। और इनका जो आम मामूल था ना, यानी जो चलते फिरते जो नेकी इंसान कर लेता है ना, चलते फिरते जैसे अब हम चलते फिरते जाए मस्जिद में जाके कुछ डोनेशन बॉक्स में डाल दी, चलते फिरते इंसान कुछ वो चलते फिरते 30-30 गुलाम आजाद कर देते थे, ऐसा उनका सदका होता था। एक दफा एक जमीन बेची है 40,000 दीनार में, सब अल्लाह के रास्ते में दे दी, तो फिर भी डरते रहते थे कि ये माल मुझे हलाक ना कर दे। और इसी तरह आप हजरत उस्मान को देख लेना, देख लें उनके पास अल्लाह ताला ने कितनी कशाइश दी थी, और सहाबा कराम का भी ये हाल था कि आप सोचें 20 साल का अरसा सिर्फ गुजरा, 8 साल में तो मक्का ही फतह हो गया था, तो वैसे ही काया पलट गई थी, लेकिन 20 साल के अरसे के अंदर ये हाल हो गया था कि जकात लेने वाला ही नहीं था कोई, देने वाले थे सिर्फ। सुभान अल्लाह, ये वही लोग थे जिन्होंने हिजरत की थी और लुटे पुटे आए थे, ना अंसार के माल में कोई कमी हुई और ना मुहाजरीन को अल्लाह ताला ने महरूम रखा। फिर जब ये खैबर वगैरह फतह हुआ था, ये तो मक्का फतह होने से भी पहले, तो तब भी मुसलमानों के हाल बदल गए थे, यानी कुछ चंद एक सालों की बात थी। अल्लाह ताला ने दुनिया में भी दिया ना, लेकिन इंसान इतना खौफ खाता है, कहता है कहाँ से खाऊंगा, मेरी रोजी का क्या बनेगा, सबसे बड़ी फिक्र ये होती। लेकिन अल्लाह ताला के वादों पर अगर इंसान यकीन रखे ना, तो अल्लाह देता है और वो कमी नहीं करता। और आखरत का अजर तो अगर पता चल जाए कि आखरत में कितना बड़ा अजर है, तो इंसान हैरान हो जाए, खुश हो जाए वो। लेकिन फरमाया लव कानू यालमून, काश के वो जानते होते, इनको इल्म होता, काश इनको पता चल जाए। इल्म ना, हम इंफॉर्मेशन को असल में इल्म समझते हैं, इंफॉर्मेशन अलग चीज है और इल्म अलग चीज है। किस चीज का पता होना, कि पता है हमें, जैसे लोग कह देते ना आप हमें क्या सिखाएंगे, पता है हमें सब कुछ पता है, वो इंफॉर्मेशन है, इल्म नहीं है। इल्म वो है जो दिल में जम जाता है, अमल की सूरत में सामने आता है, वो असल हकीकी इल्म वो है। और आप देखें ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये जो आप न्यूज़ सुनते हैं, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन, इल्म नहीं है ये। और इंफॉर्मेशन से कभी भी जिंदगियां नहीं बदलती, इल्म से बदलती हैं, कुरान का इल्म लेने से। हाँ, ये जो आप हर तरफ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप पे आ रही है, कहीं टीवी पे आ रही है, ये सब इंफॉर्मेशन, इल्म नहीं है। तो जब इल्म आ जाता है ना, तो फिर इंसान को इन वादों पे यकीन आ जाता है कि मेरे अल्लाह का वादा है कि वो दुनिया में भी अच्छी देगा ठिकाना, और आखरत का तो बहुत ही अच्छा है, फिर इंसान को कोई फिक्र नहीं रहती, परेशान नहीं होता, फिर वो ये कदम उठा लेता है। और इसके अलावा हदीस में आता है कि क्योंकि अब वो वाली हिजरत तो खत्म हो गई है ना, तो हदीस में आता है कि मुहाजिर वो है जो हर उस चीज को छोड़ दे जिससे अल्लाह ने मना किया। यानी ये भी एक हिजरत है, ये छोटी छोटी हिजरतें, आजकल वो वाली हिजरत नहीं है, तो ये हिजरत तो कर सकते हैं ना, जिसमें क्या है, जिस चीज से अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया ना, उसको छोड़ देना, ये भी तो मूव करना है ना, कि आप मूव कर गए उससे। और जब आप मूव कर गए उससे, तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला इस दुनिया में भी रिवॉर्ड करेगा। अल्लाह ताला किसी का भी रखता नहीं है। इंसान सोचता है कि पता नहीं मैं ये चीज छोड़ दूंगा, ये काम छोड़ दूंगा, कैसा मेरे गुजारा चलेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, बातें बनेंगी मेरे बारे में, मैं कैसे छोड़ूं। तो अल्लाह ताला ने इतने प्यारे वादे किए हैं कि इंसान अगर इन वादों पर यकीन करे ना, कोई गुनाह छोड़ना मुश्किल नहीं रहता। जो इंसान याद रखेगा के बाद अल्लाह के खौफ से किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज उसको इस दुनिया में अता करता है। मसलन हराम है, हराम की कमाई है, आपने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि ये जॉब हराम थी, आपने कहा कि हाय अब मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूंगी, अब हम किधर से खाएंगे। याद रखिएगा, अल्लाह ताला उससे बेहतर पाक रोजी आपको अता करेगा। इसी तरह आपने सोचा, अगर मैं हिजाब लेना शुरू कर दूंगी तो मेरा क्या बनेगा, हाय लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे मुल्ला नहीं कहेंगे, मेरे साथ कोई बैठेगा नहीं, मेरी दोस्ती मुझे छोड़ देंगी। अल्लाह ताला उससे बेहतर कंपनी आपको दे देगा। आप करके देखें, अल्लाह की खातिर किसी भी गुनाह के अंदर आप मुब्तला है तो अल्लाह की खातिर उस गुनाह को छोड़ के देखें। अल्लाह ताला उससे बेहतर ऑल्टरनेट ना दे तो कहिएगा। ये अल्लाह के वादे हैं, तुमने ये जमीन छोड़ी ना, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर जगह देगा और आखरत में भी देगा। लेकिन ये वही कर सकता है, अल्लदीना सबर वाला रबी में तवक्कलून, ये वो लोग हैं जो सबर करते हैं और अपने रब पे इनको भरोसा होता है। और सबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, कि सबर वो है कि इंसान अपने आप को नेगेटिव सेंटिमेंट से रोके, इंसान अपने आप को उन रिएक्शन से रोके जो नेचुरली आते हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की खातिर रोक दे। मसलन गम के अंदर चीखना, चिल्लाना और सर दीवारों में मारना, ये नेगेटिव रिएक्शंस है। सिर्फ इनसे किस लिए रुक जाए, अल्लाह की खातिर। तो अल्लाह ताला उसका देखिएगा कि ऐसे सबर वालों का अल्लाह ताला ने क्या रिवॉर्ड रखा। और देखिए हिजरत के कॉन्टेक्स्ट में देखिए सबर क्या है, कि इंसान अपने आप को ये इस चीज के ऊपर नेगेटिविटी से रोक ले, कि इंसान कहे कि मैंने अब सबर करना, ठीक है दूसरी जगह जाके कुछ अरसे के लिए सबर करना पड़ता है, कहीं जाएंगे तो फौरन लोग फूलों के हार तो नहीं लेके खड़े होंगे और फौरन आपके लिए कोई वेलकम करने के लिए तो नहीं खड़ा होगा, कुछ दिन सबर के भी आएंगे। सबर जिसके अंदर होगा वही हिजरत कर सकेगा। और दूसरा कौन, जो तवक्कल करता है। तवक्कल यानी अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है उसको कि मेरा रब देगा मुझे, जो भरोसा करता है उसी को मिलता है ना, मेरा रब मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मेरे साथ है। तो हदीस में आता है कयामत के दिन एक मुनादी निदा करेगा, कहाँ है सबर करने वाले, सबर करने वाले खड़े हो जाएंगे, उनको कहा जाएगा आज बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। सबर है, इंसान जल्दी ना करे, हरी ना करे, क्यों नहीं मिल रहा मुझे, क्यों नहीं ये नहीं, क्यों नहीं मेरी दुआ कबूल हो रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे ये सारी चीजें बेसब्री की है। तो बेसब्री नहीं करनी, अल्लाह ताला सबर करने वालों को ये दुनिया के हसना और आखरत का अजर देगा, और जो अपने रब पे भरोसा करते हैं। ये जो अगली आयत है ना, ये आयत से लेकर 50 आयत तक एक ही टॉपिक है जिसको हम देखेंगे एक साथ ही। और इसमें क्या है, रसूल की रिसालत के बारे में जो वो लोग एतराजात करते थे और जो इस तरह से मुखालफत करते थे, तो एक उनका बहुत बड़ा एतराज ये था कि अगर ये रसूल है तो फिर ये क्यों नहीं एक फरिश्ते, ये इंसान क्यों है, बशर क्यों है, बशर तो रसूल हो ही नहीं सकता। तो इसका जवाब पहले भी कई दफा आया हुआ है कि अगर दुनिया के अंदर फरिश्ते बसते होते तो अल्लाह ताला फरिश्तों को ही रसूल बना के भेज देता, लेकिन यहाँ पे इंसान बसते हैं, इंसानों के लिए फरिश्ता कैसे आ सकता था। और दूसरा, ये फरिश्ता आके कुछ बताता इंसानी सूरत में तो फिर भी नहीं तुमने मानना था, और अगर फरिश्ते की सूरत में आता तो तुम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे, और जो वो बातें बताता तो फिर उसके बाद लोग कहते ये तो फरिश्ता है इसलिए कर रहा है ना, हम तो इंसान है, हम कैसे कर सकते। अल्लाह ताला ने इंसानों में से ही एक इंसान को चुना अपना पैगाम देने के लिए। आज इस चीज को एक डिफरेंट तरह से इस को बताया गया, उनके इतराज का जवाब दिया गया कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, नहीं भेजे हमने आपसे पहले भी मगर मर्द, नूह ही इलैहिम, हम वही करते हैं उनकी तरफ। यानी आपसे पहले भी जो पैगंबर आए वो भी सब रसूल थे, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, इतने हैरान होने की क्या बात है, ये कहने की क्या जरूरत है कि फरिश्ता क्यों नहीं आया। तो पहले क्या फरिश्ते आते थे, पहले भी तो इंसान ही आते थे। फसअलु अहले जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, तो पूछ लो अहले जिक्र से। अहले जिक्र का मतलब क्या है, जिक्र से मुराद क्या होता है, जिक्र का मतलब होता है, वैसे मतलब होता है रिमाइंडर, याद दिहानी, वो चीज जो इंसान को याद थी लेकिन भूल गई। उसको याद कराने के लिए जो चीज आती है वो जिक्र है। इसे कहते हैं ना, हमने फलां का जिक्र किया, हम तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। तो जिक्र मतलब क्या, तुम्हें रिमेम्बर कर रहे थे, तुम्हारा यानी तुम्हें हम जानते हैं पहले से लेकिन भूल गए वो, तो उस वक्त बैठे तो हमने तुम्हें याद किया, तुम्हारा जिक्र किया। तो जिक्र से मुराद कुरान भी है और जिक्र से मुराद पिछले जो किताबें थी वो भी है। तो यहाँ पे मुराद क्या हुआ, अहले जिक्र से मुराद अहले किताब के जो लोग जानते हैं, जो जानने वाले हैं उनसे पूछ लो अगर तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हें इल्म नहीं है। क्यों ये कहा गया कि अहले जिक्र से पूछ लो, इसलिए क्योंकि उनके पास जो रसूल आए वो भी सारे इंसान ही थे, उनमें से कोई भी फरिश्ता नहीं था। तो उनको कहा गया कि आसमानी किताबों का के जो आलिम है उनके पास जाओ। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, हमें ये पता चलता है कि जब हमें कोई बात नहीं पता हो ना तो हम पूछ लें किसी से, हम ऐसा ना करें कि खुद ही कयास करने लगे मैं ये समझता हूं या मैं समझती हूँ, या हम ऐसे लोगों से जाके ना पूछें जिनको खुद कुछ पता नहीं। अक्सर देखा गया कि लोग मजलिसों में बैठे होते हैं, उनके जैसे ही लोग बेइल्म इनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, और उनसे पूछते हैं सुना है आजकल ये बात है आप इसके बारे में क्या कहते हैं, भाई वो क्या बताए, उसको तो खुद नहीं पता। हम क्यों ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं, ऐसे लोगों से इल्म लेने की कोशिश करते हैं, या ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनको खुद चीजों का इल्म नहीं है। तो यहां पता चला कि पूछना किससे है, जो उस बारे में इल्म रखते हैं उनसे पूछना है। हम बाज दफा इसी तरह क्या करते हैं कि जब हमने कुरान की तरफ आना है, कुरान को पढ़ना है, सीखना है, तो उनसे पूछ रहे होते हैं जिन्होंने कभी खुद नहीं पढ़ा होता। आप बताएं कि मैं क्लासे ले लूं, मुझे तो ऐसे कॉल आई है, मुझे तो पढ़ने को कहा गया है, मुझे तो कहा गया ज्वाइन करो, आप क्या मशवरा देते हैं, आप क्या समझते हैं। वो उनके सामने से पूछ रहे हैं जो कभी पढ़ के नहीं बैठे हुए। लिहाजा फरमाया अहले जिक्र से पूछो। इसी तरह कोई मसले मसाइल भी हो, दीन की कोई बात समझनी हो, तब भी ऐसे लोगों से नहीं पूछना चाहिए जिनको इल्म नहीं होता। और यहाँ पे अहले जिक्र की तारीफ भी है, यानी वो लोग जो वही का इल्म रखते हैं, वही इलाही को जानते हैं, उनसे जाके सवाल करना चाहिए जो दीन का सवाल हो। बिल बय्यिनाति व ज़ुबुर, सात रोशन निशानियों के और सहीफों के, यानी जो पिछले पैगंबर भी आए पिछली आयत के साथ ही ये बात जुड़ी हुई है। अच्छा हाँ, एक और बात जो यहाँ पे वाजे कर दूं, जरूरी बात है, वो ये है कि जो पिछले सारे पैगंबर आए उनके बारे में बता दिया गया कि सारे के सारे जो थे वो रिजाल थे, उनमें से कोई भी निसा नहीं थी, समझ आई बात। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं थे कि जो औरतें हों, सब मर्द थे। तो ये जो आज हमारे यहाँ ये शुरू हो गया ना कि औरत की इमामत और औरत खुतबे देगी मस्जिदों में और औरतें और मर्द एक साथ खड़े होंगे जमात के अंदर साथ साथ लग के, और हमें तो आप पीछे ना करें क्योंकि हम तो किसी से कम नहीं है, तो ये हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये रोल मर्दों के लिए ही रखा हमेशा से, आज तक कभी कोई औरत नबिया नहीं हुई। हाँ, इल्हाम किया अल्लाह ताला ने औरतों के दिल में, जैसे उम्मे मूसा के दिल में किया या हजरत मरियम के, लेकिन वो नबी नहीं बन गई, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब हो सकते हैं ये कह सकते हैं हम, लेकिन वो नबियों में से नहीं थी। तो इसलिए हमें यहाँ पता चलता है कि औरतें कभी भी नबिया नहीं हुई हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो औरतों और मर्दों के मुकाबले किए जाते हैं ना कि औरतें अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं कि हम मर्दों से कहीं कम नहीं, तो ये मुकाबले ना कुरान ने कभी किए, ना कभी ऐसी बहसें हुई सहाबा की मजलिस के अंदर, कोई कोई ऐसी चीज नहीं। ये आज हमने ये कैसे शैतान ने शोशे छोड़े हैं कि ये आज हम मर्द और औरत की इस बहस में पड़ गए कि कौन अफजल है और कौन किससे बढ़ के, और औरतों ने ये प्रूव करना है कि हम भी मर्दों के बराबर हैं। उसके लिए वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने दोनों के रोल मुख्तलिफ रखे। आज औरतों की इसके ऊपर बहुत काफी बात आएगी आगे भी, लेकिन यहाँ पे ये समझ लें कि आज तक तारीख में कभी भी कोई औरत नबी बन के नहीं आई। और ये बातें आपको पिछले जो किताबें हैं उनके जो आलिम हैं वो भी बता सकते हैं। तो वो लोग बय्यिनात लेकर आए, जो पैगंबर थे वो बय्यिनात लाए। बय्यिनात क्या होती है? मौजे भी बय्यिनात, और भी वो तमाम रोशन दलाइल जो हिदायत की तरफ लेके चले वो भी बय्यिनात। आप जैसे कि अगर कोई पैगंबर कोई मौजा भी नहीं दिखाता तो तब भी उसकी अपनी जिंदगी जो है ना वो बय्यिना होती है, वो एक रोशन दलील होती है कि ये सच्चा है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, क्या उनकी जिंदगी एक बयीना नहीं है? उनकी जिंदगी बताती है ये सच्चे हैं, इनका मिशन सच्चा है। उनकी पाकीजगी, उनकी किरदार, उनका अखलाक, उनके तौर अतवार, ये सब बयीना होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी बयीना थी। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को ऐसे ही नहीं भेज दिया, खाली हाथ नहीं भेज दिया, उनको बिल बय्यिनात रोशन दलाइल के साथ मौजजात दे के भेजा। वह जुबर, और जुबर जबूर की जमा है, यानी स्क्रिप्चर्स, सहीफे। सहीफे या तो किसी पैगंबर के साथ उसके साथ अपने सहीफे भेजे गए, या वो पिछले पैगंबर की ही शरीयत को लेके आगे चला। तो बाज के साथ किताबें आई, बाज के साथ सहीफे आए, और बाज ने उन्हीं को आगे किया। तो पैगंबरों को अल्लाह ताला ने ये दिया, वो अनजलना इलैका दिक्रा, और हमने आपकी तरफ यानी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जिक्र नाजिल किया। किस लिए ये जिक्र आया? ली तुबय्यिना लिन्नास, ताकि तू आपके ऊपर इसलिए नाजिल किया कि आप बयान करें लोगों को ये जिक्र, यानी वाजे कर दें, एक्सप्लेन कर दें इसको लोगों के ऊपर। याद रखिए ये आयत जो है ना, ये आयत उन लोगों के लिए हुज्जत है जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं है। इस आयत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी बताई गई, उनका रोल बताया गया। आपने कभी सोचा, कुरान तो अहले जुबान पे आया था, उनके अंदर ही नाजिल हुआ था। वो लोग अरबी जानते थे, वो हमारी तरह थोड़ी थे। उनके हालात को सामने रखते हुए कुरान की आयतें उतरती थी, वाकयात उनके सामने हो रहे थे। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कुरान की कुछ तख्तियां होती जो किसी पहाड़ पे पड़ी होती, वो जाके ले आते और उनको पढ़ लेते? आखिर वो अरबी तो जानते थे और आखिर उनको हालात भी पता थे, क्यों नहीं ऐसा हुआ? इससे आपको क्या बात समझ आती है? क्या अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल था? तख्तियां आ जाती हैं, हर रोज तख्तियां उतर जाती हैं, लोग ले लेते, अरबी पढ़ लेते, पढ़ के सुना देते एक दूसरे को, पढ़ना ही था ना। फिर क्यों अल्लाह ताला ने पैगंबर को भेजा? इससे आपको पैगंबर की अहमियत और उनका रोल पता चलता है कि क्यों भेजा अल्लाह ताला ने। इसलिए कि ये कुरान अगर आसमान से ऐसे ही डायरेक्ट उतर जाता और इसको कोई एक्सप्लेन ना करने वाला होता तो किसी को समझ नहीं आनी थी, ये खुद से नहीं समझा जा सकता। ये एक इंसान को दिया गया, उस पे उतारा गया, वो पढ़ के सुनाए, लोगों को एक्सप्लेन करें, खोल के बताएं, आयात को खोल के बताएं, उनको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, उनकी तशरीह करें अमल से भी और जुबान से भी, तब समझ आती है ये कुरान की, तब प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुरान जहां जरूरी है वहां पे साहिबे कुरान भी जरूरी है। क्यों ये बात लोग भूल जाते हैं कि हमें हदीस की उतनी ही जरूरत है जितनी कुरान की, क्योंकि कुरान की तफसीर हमें हदीस से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा इसको खोल के बयान किया। अगर आप ना करते हम तो एक सलाह का लफ्ज भी नहीं समझ सकते। आपको पता है वाकई सलाह कितनी दफा आया कुरान में? अब सलात के 22 माने हैं लुगत में, 22। रहमत को भी सलात कहते हैं, दुआ को भी सलात कहते हैं, आग पे तपाने को भी सलात कहते हैं। आप कौन सा माना लेते हैं? कैसे समझते क्या सलाह कैसे पढ़नी है, उसके अंदर कयाम में क्या पढ़ना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, ये बातें तो नहीं है कुरान के अंदर। कौन आपको बताता कितनी रकतें हैं? कौन बताता? और बेशुमार बातें इससे रिलेटेड, वुजू के तरीके को ब्रीफली कुरान के अंदर बताया गया है, लेकिन एक्सप्लेन करना इस ये किससे टूट जाता है, इसकी एक एक छोटी छोटी बारीकी को बताना, इसको करके दिखाना, ये सब तो कुरान में नहीं है। इसके लिए कोई इंसान चाहिए था जो हमारे सामने होता, जो करके दिखाता, उसको देखने वाले फिर वैसा करते, फिर वो आगे वालों को वैसा बताते, इसकी जरूरत थी। फिर जब लोग कहते हैं हम कुरान को तो ले लेते लेकिन हमें हदीस की जरूरत नहीं, तो गोया वो ये कह रहे हैं हमें नबी की जरूरत नहीं, नबी की बात ही हदीस है। तो इसलिए जहां कुरान है वहीं साहिबे कुरान है। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने नाजिल किया अद्दिकर, रिमाइंडर है। सबसे पहली तो ये बात कि ये नसीहत है, ये रिमाइंडर है। ये नहीं आपको कोई कह रहा कि आपको कुछ नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि गलत क्या और सही क्या है। अल्लाह ताला ने अल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा फरमाया कि हमने इंसान के अंदर डाल दिया उजूर और तक्वा, उसको पता है चीजों का, ये बुरी है ये अच्छी है, ये चोरी बुरी है, ईमानदारी अच्छी चीज है, सच बोलना अच्छा है, झूठ बुरी चीज है, ठीक है, इतना तो अल्लाह ताला ने अंदर डाल दिया। मगर दीन की बारीकियां इंसान को नहीं पता जब तक वो किसी से सीखे नहीं, समझे नहीं इन चीजों को, किसी को करता हुआ नहीं देखे। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर को मबऊस किया। वो पैगंबर एक रहमत है, एक किताब ऐसे ही दे दी जाए नहीं लोग समझ सकते, बेशुमार चीजें इसमें नहीं समझ सकते, कुछ से कुछ करने लग पड़ेंगे। इसीलिए आज ये लोग क्यों कहते हैं कि हमने हदीस को नहीं मानना, जानते हैं इनके पीछे इनका मोटिव क्या है? पता है आपको? इसलिए कि अगर हदीस निकाल दी ना तो फिर तो मजे ही आ गए, क्योंकि कुरान की जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करते रहो, फिर जैसे मर्जी समझो, जिसका दो जो दिल करेगा वो वैसे समझेगा। सलात का माना दुआ कर लिया, चलो जी आप उठ के दुआ कर लिया करें, बस सुबह भी दुआ कर ले, शाम को भी दुआ कर ले। अब देखिए ना सलात का तो मतलब लुगत में दुआ भी है, तो कोई बात नहीं, आप दुआएं किया करें, हो गया काम। अब क्या, ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूं, ऐसी बेशुमार मिसालें। जिस वक्त आप हदीस को निकाल देंगे तो कुरान को फिर जैसे मर्जी माने ट्विस्ट किए जाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन कर दिया इसको, और यही चीज है जो उम्मत को मुत्तहिद करने वाली है। जब लोग अपनी मनमानियां करना चाहते हैं तो हदीस को निकाल देते। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। तुम इनको पकड़े रखोगे ना तो कभी गुमराह नहीं होंगे, और आज गुमराह ही इसलिए कि इनको छोड़ दिया। और आप सल्लम की पेशीन गोई है ये, यहाँ सल्लम ने पेशीन गोई की थी कि एक आदमी ऐसा होगा कि जो तकिया लगाए हुए ऐसे बैठा होगा और कहेगा हमारे लिए कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं। समझ आई? तो इसलिए याद रखिए कुरान समझ नहीं आ सकता जब तक हदीस ना। याद रखिए ऐसे लोगों के कभी फितने में ना आए, और ये लोग आजकल बहुत फैल रहे हैं, और ये लोग यूथ को बहुत टारगेट करते हैं, ये कॉलेजों वगैरह में, इसमें ये लोग बहुत है जो ये कहते हैं कि बस कुरान काफी है ना, हदीस को छोड़ दो, हदीस तो पता नहीं जी बाद में लिखी गई, हदीस का क्या है पता। यार इनसे बंदा पूछे लोगों तुम्हें इतना भी पता है कि हदीस को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया गया? तुम जानते हो? तुम रिजाल का इल्म जानते हो? जिनसे हदीस ली गई उनका इल्म जानते हो? उनके ऊपर किताबें हैं, तुमने कितनी हदीस की किताबें पढ़ी हैं? तुम्हें ये भी पता है कि हदीस होती क्या है, कैसे हम तक पहुंची, इसका पूरा क्राइटेरिया पता है? या बस सुनी सुनाई बात किसी ने कह दिया कि हदीस तो बाद में लिखी गई जी, हदीस के ऊपर हदीस का क्या असर। या मैंने जैसे आपको पिछली बताया था किसी ने मुंह की बातें ना जो मर्जी शैतान मुंह में डाल दे, किसी ने जी कह दिया तो उन्होंने सहाबा ने हदीस लिखी, वो तो आदमी थे इसलिए उन्होंने आदमियों की फेवर में लिख दी, देखिए औरतों की फेवर में नहीं है हदीस। ये कहां के झूठ बोहतान इल्जाम सहाबा पे, ये यानी जिसका मतलब तो ये कि हदीस तो बाद में लिखी गई, हदीस तो इसलिए वो काबिले अमल नहीं, इसलिए हम भरोसा नहीं कर सकते। यानी तुम भी सहाबा के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि सहाबा ने हदीस को प्रिजर्व नहीं किया सही से, उन्होंने खुद से लिख दी चीजें। उठा के देखें ये क्रिश्चियंस की सारी बुक्स जो है ना कितनी बाद में लिखी गई, कितनी बाद में लिखी गई। ईसा अलैहि सलाम भी उठा लिए गए उनके भी बाद, उनके हवारियों ने खुद ही लिख ली, उनका तो कहा जा सकता है, हमारा ऐसा नहीं है। ये इल्म अगर आप देखें ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे हदीस हम तक पहुंची है, हैरान हो जाएंगे आप। इनसे इंसान पूछे, जरा कभी पूछ के देखिएगा ऐसे लोगों से कि आपको कितना इल्म है इस बात का कि हदीस हम तक कैसे पहुंची। कभी आपने इसकी तहकीक की है या उसने कह दिया, उसने ही से की बात लेके तो चल पड़, और आप देख लें 100% ऐसा होगा कि उनको कुछ नहीं पता होगा, बस मुंह की बातें हैं। और इस तरह से आज हमारे दीन को बिगाड़ा जा रहा है। ऐसा इंसान मुसलमान नहीं रह सकता जो हदीस का इनकार करते, जो हदीस को रद्द करते, वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि उसने तो रिसालत को ही रद्द कर दिया ना फिर, नहीं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है फिर, तो वो एक आम ही इंसान है, वो कोई रसूल तो नहीं है फिर। क्योंकि तो अगर आपने हदीस ही नहीं लेनी तो उनका ये रोल ही खत्म कर दिया, तो बस वो फिर एक अच्छे इंसान थे जो अपने वक्त में आए थे और गुजर गए, ये कहना चाहते हैं। उनकी रिसालत है ही ये कि वो आज तक रसूल हैं और कयामत तक वही आखिरी रसूल है, और उनके बाद रिसालत का सिलसिला खत्म है, अब कोई रसूल नहीं आएगा। तो उनकी रिसालत को मानना ही ये है कि उन हदीस को माना जाए। लेकिन हदीस का इनकार करके आज ईमान के लुटेरे ईमान लोगों का छीन रहे हैं। एंड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिनका मुझे नहीं पता था कि ये भी हदीस के मुनकर हो सकते। अच्छे भले जो यानी अपने जानने वालों में ऐसे अच्छे भले लोग जो बाहर देखने में ऐसे ही लगता है कि अच्छे भले मुसलमान है, इंसान उनसे पूछे ये नमाज का तरीका तुम्हें कहाँ से आया, तुम तो नमाज ही नहीं पढ़ सकते अगर कुरान सिर्फ लेके चलो तो, अगर हदीस निकाल दो तो। लेकिन वो अपने आप को पक्के मुसलमान समझते और लेकिन हदीस का इनकार है, मनमानियां जो करनी है। तो फरमाया वह अनजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि, ताकि आप बयान कर दें लोगों के लिए मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उतारा गया उनकी तरफ, इसको खोल खोल के लोगों को वाजे कर दें। इसलिए नहीं कह सकते आज कोई भी उठ के ये नहीं कह सकता मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या सही है क्या गलत है। कैसे नहीं तुम्हें समझ आती, तुम क्या ये कहना चाहते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, ये कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात छोड़ दी बताने से, जबकि नबी अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकती थी और जहन्नुम से दूर कर सकती थी, मगर मैंने उसका हुक्म दे दिया तुम्हें, और एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर सकती थी और जहन्नुम से करीब कर सकती थी, मगर मैंने उससे मना कर दिया तुम्हें। मैंने तुम्हें उससे मना कर दिया जो तुम्हें जहन्नुम से करीब कर सकती थी वो भी बता दिया तुम्हें, और जो जहन्नुम से दूर कर सकती थी वो भी तुम्हें बता दी, उनका भी हुक्म दे दिया तुम्हें, एक चीज भी नहीं ऐसी छोड़ी। इसका मतलब है अगर कोई ऐसा काम करता है जो नबी की सुन्नत में नहीं है, जो दीन में नहीं था, मगर वो सोचता है ये नेकी का काम है, सो व्हाट, कोई बुरा काम तो नहीं है ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, वो दीन में नहीं है, तो चाहे वो कितना ही अच्छा काम है। इमाम मालिक फरमाते हैं वो ऐसे ही है जैसे कि वो कह दे गया या जैसे कि वो गुमान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत की है रिसालत। अस्तग़फिरुल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभाई, यानी आपको ये बताना वो भूल गए, उन्होंने तो फिर अपना काम ही पूरा नहीं किया, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जॉब है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नज़ला इलैहिम, कि वो लोगों के ऊपर वाजे कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी, फिर भी आज कितने लोग हैं जो महरूम है इस वजाहत से जो उन्होंने कर दी। हमारे 90% लोग इस वजाहत को जानने से महरूम है। उन्होंने अपनी जॉब पूरी कर दी, उन्होंने वजाहत कर दी जो हमारे पास महफूज है, सेव है हमारे पास तफसीरों में, लेकिन और किसके लिए की थी? लिन्नास, लिए लोगों के। क्या हम उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए उन्होंने वजाहत की और वो आज उस वजाहत को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हैं, या हम उन लोगों में से हैं जिनको कोई परवाह नहीं? वो दे डोंट केयर, उन्होंने वजाहत कर दी होगी, हमें क्या, हमारे पास कौन सा टाइम है ये सारी वजाहतें सुनने का और समझने का? अल्लाह अकबर। अब देखना चाहिए कि हम कौन से वाले नास में से हैं। और यहां से हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जानना कितना जरूरी है दीन पे अमल करने के लिए। पता चल रहा है ना यहां से, जरूरत है या नहीं फिर हदीस की? अगर है जरूरत, अगर आप हाँ कह रहे हैं, तो कितनी हदीस पढ़ी है आपने? अगर अभी तक नहीं पढ़ी कोई भी किताब हदीस की, तो दिल में इरादा कर लें कि मैंने हदीस पढ़नी है। दुआएं करें कि अल्लाह मुझे मौका देना कि मैं हदीस को समझूं, सीखूं उसको। मुझे मरने से पहले ये मौका जरूर अता कर देना, क्योंकि वो वजाहत है इस कुरान की। तो वाला अल्लाहुम यतफक्करून, और इसलिए ताकि वो तफक्कुर करें इसमें, किसमें, इस कुरान में तफक्कुर करें, इसमें गौर व फिक्र करें। बहुत से लोग कहते हैं हमें गौर व फिक्र करना नहीं आता। करना उस वक्त आएगा जब पीछे इल्म होगा। जब इल्म आता है ना, तो फिर गौर व फिक्र करना आता है। इल्म ही नहीं हो तो गौर व फिक्र किस पे करना? तो ये अल्लाह ताला ने जिक्र, रिमाइंडर भेजा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जिक्र उस चीज को कहते हैं जो याद दहानी होती है। आपको पता था कोई चीज लेकिन आपको भूल गई भी थी, वो सबक जो अल्लाह ताला ने आपको पढ़ा के भेजा था वो भूल गया था, दुनिया में आए गफलतों में पड़ गए। ये कुरान जिक्र है, रिमाइंड कराता है, और रिमाइंडर कितनी दफा चाहिए होता है? हाँ वैसे तो हर एक से पूछ लें, जिससे बात करें वो कहते हैं हम भूल जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहता क्या करें। तो जो ज्यादा भूलने वाला उसको ज्यादा रिमाइंडर चाहिए होता है या कम? हम सब भूल जाने वाले हैं ना, तो हमें कितनी दफा रिमाइंडर चाहिए? बहुत ज्यादा रिमाइंडर चाहिए। इसके बावजूद हमारा हाल ये होता है, हम एक दफा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सोचते हैं अब मुझे रिमाइंडर की क्या जरूरत है, अब सारी जिंदगी के लिए वो जो एक दफा पढ़ा था वो ही काफी है, रिमाइंड हो गया मेरे लिए।